Dear listeners, live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prashanti Nilayam will follow shortly. Please stay tuned.
సాయి శ్రోతలకు సాయిరాం. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభామండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి.
Dear listeners, live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prashanti Nilayam will follow shortly. Please stay tuned.
పమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినేవతి ధీనామ విత్రయవతో గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీగురుభ్యో నమః హరిః ఓం. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః. నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముతతే నమః. యాత ఇషు శివతమా శివం బభూవతే ధనుః. శివాశరవ్యాయాతవతయా నో రుద్రమృడయా. యాతే రుద్ర శివా తనురఘోరా పాపకాశినీ తయానస్తను వాశంతమయా గిరిశంతాభిచాకషీః. యామిషుం గిరిశంతహస్తే బిభర్ష్యస్తవే. శివాం గిరిత్రతాం కురుమాహిగుంసీః పురుషం జగత్. శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛావదామసి. యథా నః సర్వమిజ్జగద యక్ష్మగుం సుమనా అసత్. అధ్యవోచదధివక్తాః ప్రథమో దైవ్యోభిషక్. అహీగుశ్చ సర్వాన్ జంభయన్ సర్వాశ్చ యాతు ధాన్యః. అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః. యే చేమాగుం రుద్రా అభితో దిక్షుశ్రితా సహస్రశో వై షాగుం హేడ ఈమహే. అసౌయో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః ఉతైనం గోపా అదృశన్నదృశన్నుదహార్యః ఉతైనం విశ్వా భూతాని సదృష్టో మృడయాతినః నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీడుషే అథో యే అస్య సత్వానోహం తేభ్యో కరణమః ప్రముంచ ధన్వనస్త్వముభయోరాత్నియోర్జ్యాం యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప అవతత్య ధనుస్త్వగుం సహస్రాక్షశతేషుధే నిషీర్య శల్యానాం ముఖా శివో నః సుమనా భవ విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగుం ఉత అనేషన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగతిః యాతే హేతిర్మీడుష్టమహస్తే బభూవతే ధనుః తయాస్మాన్ విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిభుజా నమస్తే అస్త్వాయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్ వృణక్తు విశ్వతః అథోయ ఇషుదిస్తవారే అస్మన్నిధే హితం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః నమో హిరణ్యవాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో పశూనాం పతయే నమో నమః సస్పింజరాయ త్రిషేమతే పథీనాం పతయే నమో నమో బభ్లుషాయ వివ్యాధినేనానాం పతయే నమో నమో హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమో నమో భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమో నమో రుద్రాయ తతావినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో నమః సూతాయ హంత్యాయ వనానాం పతయే నమో నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో నమో భువంతయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం పతయే నమో నమ ఉచ్చైర్ఘోషాయ క్రందయతే పత్తీనాం పతయే నమో నమ కృత్స్నవీతాయ ధావతే సత్వనాం పతయే నమః నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో నమః ककुभाय निषंगिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषंगिन इषुधिमते तस्करानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां పతయే నమో నమశ్రుతావిభ్యో జిగాగుం సద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే నమో నమో సిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యః ప్రకృంతానాం పతయే నమో నమ ఉష్ణీషిణే గిరిధరాయ కులుంచానాం పతయే నమో నమ ఇషు మద్వ్యోధన్ వావిభ్యశ్చ వో నమో నమ ఆతన్ వానేభ్య ప్రతిదానేభ్యశ్చ వో నమో నమ ఆయశ్చ ద్యో విసృజద్భ్యశ్చ వో నమో నమోస్యద్భ్యో విద్యద్భ్యశ్చ వో నమో నమ ఆసీనేభ్యశ్చ యానేభ్యశ్చ వో నమో నమ స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమో నమస్తిష్టద్భ్యో ధావద్భ్యశ్చ వో నమో నమ సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో అశ్వేభ్యో అశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః నమ ఆవ్యాధినేభ్యో వివిధ్యంతేభ్యశ్చ వో నమో నమ ఉగణాభ్యస్తృగుం హతేభ్యశ్చ వో నమో నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో భ్రాతేభ్యో భ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమో నమో మహద్భ్యః క్షుల్లకేభ్యశ్చ వో నమో నమో రథిభ్యో రథేభ్యశ్చ వో నమో నమో రథేభ్యో రథపతిభ్యశ్చ వో నమో నమస్సేనాభ్యసేనానిభ్యశ్చ వో నమో నమః శత్రుభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమ కులారేభ్య కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో నమ పుంజిష్టేభ్యో నిషాదేభ్యశ్చ వో నమో నమ ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్భ్యశ్చ వో నమో నమో మృగయుభ్యశ్వనిభ్యశ్చ వో నమో నమశ్వభ్యశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ నమః సర్వాయ చ పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ నమః కపర్దినే చ వ్యుక్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ నమో గిరిశాయ చ శిపిభిష్టాయ చ నమో మీరుష్టమాయ చేసుమతే చ నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ నమో వృద్ధాయ చ సంవృద్ధ్వనే చ నమో అగ్ర్యాయ చ ప్రథమాయ చ నమః ఆశవే చాజిరాయ చ నమః శీఘ్రియాయ చ శేభ్యాయ చ నమః భూర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ నమః శ్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ నమో జఘన్యాయ చ బుద్ధ్నియాయ చ నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ నమః ఉర్వర్యాయ చ కళ్యాయ చ నమః శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయ చ నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ నమః ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ నమః శూరాయ చావభిందరే చ నమో వర్మిణే చ వరూతినే చ నమో బిల్మినే చ కవచినే చ నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ నమో దుందుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ నమో కృష్ణవేద ప్రమృజాయ చ నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ నమః తీక్ష్ణేశవే చాయుధినే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ నమః శ్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నిప్యాయ చ నమః సూర్యాయ చ తరస్యాయ చ నమో నాద్యాయ చ వైశంతాయ చ నమః కూప్యాయ చ వట్యాయ చ నమో వర్ష్యాయ చ వర్ష్యాయ చ నమో మేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ నమః ఈద్రియాయ చ తప్యాయ చ నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ ఓం హర 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 ఓం నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమః తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమః ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమో అంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమః శంభవే చ మయో భవే చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ నమస్తేర్త్యాయ చ కూల్యాయ చ నమః పార్యాయ చ వార్యాయ చ నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ నమః ఆదాద్యాయ చ లాద్యాయ చ నమః శష్ప్యాయ చ భేణ్యాయ చ నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ నమ హిరణ్యాయ చ ప్రపత్యాయ చ నమః కిగుంశిలాయ చ శయనాయ చ నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ నమో గోష్ట్యాయ చ గృహ్యాయ చ నమః స్కల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ గవరేష్ఠాయ చ నమో హృదయ్యాయ చ నివేష్ట్యాయ చ నమః పాగుంసవ్యాయ చ రజస్యాయ చ నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ నమః ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ నమో పగురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ నమః ఆఖిదతే చ ప్రఖిదతే చ నమో వక్కిరికేభ్యో దేవానాగుం హృదయేభ్యో నమో విక్షీణకేభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో నమ ఆనిర్హతేభ్యో నమ ఆమీవత్కేభ్యః ద్రాపే అంధసస్వతే దరిద్రం నీలలోహితాం ఏషాం పురుషాణామేషాం పశూనాం మాభేర్మారోమో ఏషాం కించనామమత్ యాతే రుద్ర శివా తను శివా విశ్వాః భేషజీ శివా రుద్రస్య భేషజీ తయానో మృడజీవసే ఇమాగుం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్దేరాయ ప్రభరామహే మతిం యథా నశ్యమతద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురం మృడానో రుద్రోతనో మయస్కృధి క్షయద్దేరాయ నమసా విధేమతే యచ్ఛం జయోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామతవ రుద్ర ప్రణీతౌ మానో మహాంతముతమానో అర్భకం మాన ఉక్షంతముతమాన ఉక్షితం మానో వధే పితరం మోద మాతరం ప్రియామానస్తనువో రుద్రరీషః మానస్తోకే తనయే మాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషురీషః వీరాన్ మానో రుద్రభామితో వధీర్హవిష్మంతో నమసా విధేమతే ఆరాతే గోఘ్న ఉత పూరుషగ్నే క్షయద్దేరాయ సుమ్నమస్మేతే అస్తు రక్షాజనో అధిచ దేవ బ్రూహ్యదాచన శర్మ యచ్ఛద్విబరహాః సుభిశ్రుతం గర్త సదం యువానం మృగన్న భీమముపహత్నుముగ్రం మృడాజరిత్రే రుద్రస్తవానో అన్యంతే అస్మన్నివపంతు సేనా పరిణో రుద్రస్య హేతుర్వరిద్వేషస్య దుర్మతిరఘాయో అవస్థిరా మగవద్వ్యస్తను స్వమీవస్తోకాయతనయాయ మృడయా మీడుస్తమ శివతమ శివో నః సుమనా భవా పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్రిం వసాన ఆచర పినాకం విభ్రదాగహే విగీద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః యాస్తే సహస్రగుం హేతయోన్యమస్మన్నివ పంతు తాః సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః తామీజానో భగవ పరాచీనా ముఖాకృధి సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రాధిభూమ్యా తేషాగుం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్వసే అస్మిన్ మహత్యర్నవేంతరిక్షే భవా అధి నీలగ్రీవాశ్చితికంఠా సర్వా అధః క్షమాచరాః నీలగ్రీవాశ్చితికంఠాదివగుం రుద్రా ఉపశ్రితాః యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః యే భూతానామధిపతయో విశిఖాస కపర్దినః యే అన్యేషు విభిద్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ యే పథాం పతిరక్షయ ఐలభృదాయవ్యుధః యే తీర్థాని ప్రచరంతి శృకావంతో నిషంగినః య ఏతావంతశ్చ భూయాగుంశ్చ దిశో రుద్రావితస్థిరే తేషాగుం సహస్రయో జనే వధన్వాని తన్వసే నమో రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేంతరిక్షే యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్షమిషవస్తేభ్యో దశ ప్రాదీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రదీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాస్తేభ్యో నమస్తే నో మృడయంతు తేయం దుష్మోయశ్చ నో ద్వేష్మితం భోజం హే దధామి త్రింబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సుయ ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ఏతే సహస్రమయుతం పారా మృత్యోర్మర్త్యాయ హంతవే తాన్యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవయజామహే మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా విశాంతకః తేనాన్నేనాప్యాయస్వా నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి తముష్టు హియశ్రిషు సుధన్వాయో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య యక్ష్వా మహేశౌ మనసాయ రుద్రం నమో భిర్దేవమసురం దువస్యాం అయం మే హస్తో భగవాన్ అయం మే భగవత్తరః అయం మే విశ్వభేషజో యగుం శివాభిమర్శనః ఓం శాంతి 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 ఓం. ఓం శంచ మే మయస్చ మే ప్రియంచ మేను కామస్చ మే కామస్చ మే సౌమనసస్చ మే భద్రంచ మే శ్రేయస్చ మే వశ్యస్చ మే యశస్చ మే భగస్చ మే ద్రవిణంచ మే యంతాచ మే ధర్తాచ మే క్షేమస్చ మే ధృతిశ్చ మే విశ్వంచ మే మహస్చ మే సంవిచ్చ మే జ్ఞాత్రంచ మే సూశ్చ మే ప్రసూశ్చ మే శీరంచ మే లయశ్చ మరుతంచ మే మృతంచ మే యక్ష్మంచ మే నామయశ్చ మే జీవాతుశ్చ మే దీర్ఘాయుత్వంచ మే నమిత్రం చ మే భయంచ మే సుగంచ మే శయనంచ మే సోషాచ మే సుదినంచ మే ఓం శాంతి 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 నిధనపతయే నమః నిధనపతాంతికాయ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః సువర్ణలింగాయ నమః దివ్యాయ నమః దివ్యలింగాయ నమః భవాయ నమః భవలింగాయ నమః శర్వాయ నమః శర్వలింగాయ నమః శివాయ నమః శివలింగాయ నమః జ్వలాయ నమః జ్వలలింగాయ నమః ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః ఏతత్ సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగగ్రస్థాపయతి పాణిమంత్రం పవిత్రం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః భవే భవే నాతి భవే భవ స్వాహం భవోద్భవాయ నమః వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాళాయ నమః కల వికరణాయ నమో బల వికరణాయ నమో బలాయ నమో బల ప్రమథనాయ నమః సర్వభూత దమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహే తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివో నమో హిరణ్యవాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయే అంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే నమో నమః రుదగుం సత్యం వరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళం ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః సర్వో వై రుద్ర తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు. పురుషో వై రుద్ర సన్మహో నమో నమః. విశ్వం భూతం భువనం చిత్రం బహుధా జాతం జాయమానం జయత్. సర్వో హేష రుద్ర తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు. కద్రుద్రాయ ప్రజేతసే మీడుష్టమాయతవ్యసే వోచే మసందమగుం హృదే. సర్వో హేష రుద్రస్తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు. జాతభేదసే సునవామసో మమరాతీయతో నిదః దివేదః. సన పరిషదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః. తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మ ఫలేషు జుష్టాం. దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తి విరది దుర్గాణి విశ్వా. పూశ్చ పృథ్వే బహుళాన ఉర్వే భవతో కాయతనయాయ చయ్యో. విశ్వానియో దుర్గః జాత వేదః సింధుం ననావా దురితాపి పర్షే. అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానోస్మాకం బోధ్య వితాతనూనాం. ప్రతనాజితగుం సహమానముగ్రమగ్నిగుం హువేమ పరమాస్తతస్తాత్. సన పరిషదతి దుర్గాణి విశ్వాక్షామద్దేవో అతిదురితాత్యగ్నిః. ప్రత్నోషి కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చహోతానవ్యస్య చక్షే. స్వాంచాగ్నే తనువం విప్రయస్వాస్మభ్యం జసౌ భగమాయజస్వ. గోభిర్జుష్టమయుజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరను సంజరేమ. నాగస్య పృష్టమవిసంవసానో వైష్ణవీం లోకమిహమాదయంతాం. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి. తన్నో దుర్గి ప్రజోదయాత్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం. న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మోస్ట్ హంబల్ ప్రణామ్స్ ఎట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ అవర్ బిలవెడ్ భగవాన్. Respected elders, sisters and brothers, utho jago aur tab tak mat ruko jab tak tum apni manzil na palo. Arise, awake and stop not till your goal is reached. For years these lines of Swami Vivekanand have aroused the whole young generation. Swami Vivekanand is one of the most inspiring and powerful personalities of the modern India, produced by our great motherland, Bharat. To seek the answers for some of the fundamental questions of our life. Naren, as he was then, wandered at various places and finally got the fulfillment under the tutelage of his God-realized master, Ramakrishna Paramhans. But even then, the necessary learning for him was not complete. He traveled throughout the length and breadth of India, right from Himalayas to Cape Comorin, to grasp the comprehensiveness of the vast whole of which his master's life and personality was a living model. Today, we, Sai youth and the Bal Vikas students of Sri Satya Sai Seva Organization Rajasthan, find immense pleasure in presenting before you a drama in Hindi entitled Amrit Putra Swami Vivekananda, with the hope that every student of our Bhagwan be a beacon of light like Swami Vivekananda and spread the glory of our divine master, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Jai Sai Ram.
आज मैं आप सब लोगों को इस जननी जन्मभूमि भारत माँ के एक सच्चे सपूत अमृत पुत्र विवेकानंद की कहानी सुनाता हूँ। विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के सिमला स्थान में विश्वनाथ एवं भुवनेश्वरी देवी के यहाँ हुआ। बचपन से ही नरेंद्र के मन में आध्यात्म के प्रति गहरी रुचि और साधुओं के लिए बड़ा सम्मान था। जब भी कोई साधु उनके दरवाजे आता, बेटा जाकर अंदर पूछ कर आओ कि इस बूढ़े गरीब के लिए कोई चादर मिल जाए तो।
अच्छा बाबा, ये लो बाबा।
धन्य हो बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत महान है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
बाबा आपने कभी भगवान को देखा है?
ऐसे हमारे भाग्य कहाँ बेटा, उन्हीं के दर्शन के लिए तो दर दर भटकते हैं। पर हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे उनकी झलक दिखती है, तुम्हें अवश्य ही एक दिन उनके दर्शन होंगे। और इस तरह नरेन ने ईश्वर की खोज प्रारंभ कर दी। उस समय कई बंगाली युवक ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा में जाया करते थे। नरेन भी ईश्वर की खोज में ब्रह्म समाज में जाने लगे।
तुम ही भक्त। अरे नरेन, बहुत चुप चुप हो, परेशान लगते हो, क्या बात है?
कुछ नहीं। हाँ, मगर ये सच है, कई दिनों से एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेरा हुआ है। मैं कुछ समय से ब्रह्म समाज में आ रहा हूँ। ब्रह्म समाज जिन बातों पर जोर देता है, मुझे उन पर भी आस्था है। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं। स्त्री शिक्षा और नारी स्वतंत्रता पर मुझे विश्वास है। मैं आपके लेखों और आपके भाषणों से काफी प्रेरित हुआ हूँ, मगर फिर भी कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे।
क्या है वो? किस चीज की तुम्हें हो जाए?
केशव बाबू, मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्ययन किया, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन जिस तरह बचपन में ईश्वर को अनुभव किया करता था, उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ।
इसके लिए तुम्हें महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारी सहायता कर सके।
महाशय, क्या आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है?
नरेन, तुम्हारा आँख एकदम जोगियों का सामान है, तुमको ध्यान करना चाहिए।
क्या आपने ईश्वर को देखा है?
नरेन, तुम फिर कभी आना, मुझको अभी बहुत जरूरी काम है। हाँ, तुम फिर कभी आना, फिर कभी।
मुझे लगता है मैं अंधों के बाजार में आईना लेकर घूम रहा हूँ। कैसे होंगे मुझे ईश्वर के दर्शन? कौन मिलवाएगा मुझे ईश्वर से? मीरा भी शायद इसी तरह तड़पी होगी प्रभु दर्शन को।
नरेन की ईश्वर का अनुभव पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि वो अपने कॉलेज के अध्यापक को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते थे। एक दिन
और अपने एकांकी भ्रमण के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब मैं उस अनुभूति में डूब जाता हूं और ऐसा लगता है मानो मेरी चेतना ही समाप्त हो जाती है। वुड्सवर्थ का प्रकृति से अत्यंत विशिष्ट नाता है, उसके और प्रकृति के बीच की दूरी मिट सी जाती है। वह एक प्रकार की विशेष अवस्था में होता था जब वह प्रकृति के संपर्क में होता। वह एक विशेष प्रकार का अनुभव था जो केवल उन्हें मिलता है।
श्रीमान, क्या किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है?
मेरा कहना है कि अतीव आनंद की अनुभूति को जीने वाला एक ही व्यक्ति है, रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर में रहते हैं।
बस इस आशा के साथ कि आज मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जान लूंगा, वे अपने एक दोस्त को लेकर पहुंच गए दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से मिलने।
जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई एक्वा कहता है, उसी तरह से एक ही सच्चिदानंद को कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है।
प्रभु, मैं अपने मित्र नरेन को आपसे मिलवाने लाया हूँ, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं।
नरेंद्र, नरों में इंद्र, अच्छा तो गाएगा ही। आज का दिन नक्षत्रों के मिलाने का दिन है, पगले आज तू गाएगा और मैं सुनूंगा।
घर चलो मन, घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर, ये जग बिल्कुल पराया पराई चादर, शान झूठी मान झूठा खेल है पल भर। थके हो तुम लगे हो ताकते सपने, घर चलो मन आज ही अपने। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है, वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है, वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। द्वार का वो दीप जलता लगा है दिखने, घर चलो मन आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने, घर चलो मन।
क्या तुम्हें सोने से पहले एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है?
हाँ, क्या हर किसी को दिखाई नहीं देता?
ओ, तूने आने में बहुत देर कर दी, कितना निर्दयी है तू। तूने मुझसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई, संसारी लोगों की ओछी बातें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए थे। ओह, कब से तरस रहा था कि मुझे कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, जिसके सामने अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। प्रभु, मुझे मालूम है कि आप प्राचीन ऋषि नर हो, मनुष्य के दुख हरने के लिए ही तो आपने इस धरती पर जन्म लिया है। मुझे वचन दे तो दोबारा दर्शन देगा, जल्दी।
सुनिए, क्या आपने भगवान को देखा है?
हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ साक्षात।
दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात ने नरेन को पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया और वे रामकृष्ण को अपनी तर्क बुद्धि पर तोलने के लिए व्याकुल हो रहे थे, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वे उन्हीं के बारे में सोचते रहते।
नरेन, नरेन।
कौन?
महेंद्र।
महेंद्र, आओ।
यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो?
सोच रहा हूँ
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में।
हाँ, असाधारण व्यक्ति है वो, है ना?
मित्र, तुम तो कई बार उनसे मिल चुके हो, तुम ही बताओ तुम क्या सोचते हो उनके बारे में।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने तो मुझे पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। मालूम नहीं वो संत है या सम्मोहक। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मुझे लगा वो पागल है, मगर ना जाने ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए विवश करता है। महेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धि पाई है, मैं तब तक उस चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं। लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूचे बौद्धिक विश्वास को हिलाकर रख दिया। मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं।
वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो।
मुझे मालूम है, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ तो वो मुझे बार बार आने के लिए विनती करते हैं, अपार स्नेह के साथ मेरा स्वागत करते हैं। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो अपने स्नेह से मुझे चुप करवा देते हैं। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ छुआ, स्नेह भरा स्पर्श था वो, अनोखा अनुभव हुआ मुझे। मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे लगा जैसे भजन कक्ष की दीवारें ही नहीं बल्कि सारी चीजें धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही है। सारा ब्रह्मांड जिसमें मैं भी हूँ दौड़ा चला जा रहा है, मानो एक बड़े से शून्य में घुसने के लिए। मैं तो डर गया, मैं चिल्ला पड़ा और वो हंस पड़े, कहने लगे कि ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही, तुम जाओ, समय आने पर सब होगा।
तुम उनका विरोध क्यों करते हो नरेन? वो सबसे कहते हैं तुम ध्यान सिद्ध हो, तुम ही एक ऐसे शिष्य हो जिसे वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तुमसे मिलना चाहते हैं नरेन, तुमसे मिलना चाहते हैं।
मैं उनके पास जाऊंगा, मैं सदा से सत्य की खोज में भटकता आ रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब मुझे लगता है कि दक्षिणेश्वर के उस व्यक्ति के पास ही मेरे उन प्रश्नों के उत्तर हैं।
और इस तरह सत्य की खोज में लगे नरेन को ईश्वर का अनुभव पाने की आशा बंधने लगी और इसी कोशिश में वे बारंबार दक्षिणेश्वर जाने लगे।
मुझे मालूम था आज तू आएगा, देवी मां ने मुझसे कहा था, आओ नरेन।
देवी मां ने आपसे कहा कि मैं आज आऊंगा? लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वो ही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही है।
ओ नरेन, तू इस तरह क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है कि तू अवश्य ही एक दिन उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाएगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा, पर उससे पहले तुझे उस दिव्य माँ की सत्ता को स्वीकारना होगा। परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने अपने आप को समर्पित करना होगा।
तो फिर आप मुझे 3-4 दिन लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते?
तुझे शर्म आनी चाहिए, तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े वट वृक्ष की तरह है जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने आप से ही मतलब रखता है।
प्रभु प्रभु, मैं दुखी पीड़ित हूँ, मेरा मन अशांत है, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं व्याकुल हूँ, लेकिन वो मुझे दर्शन ही नहीं देते। मैं रात रात भर ध्यान में लीन रहता हूँ, मेरी सुध-बुध खो जाती है, इस तरह ये सारा संसार मुझे अपनी ओर तुच्छ लगता है। जब मैं आपके पास होता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। प्रभु प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु।
नरेन मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है, मैंने 12 बरस तक उसका अनुभव किया है। 12 बरस तक एक तेज आंधी मेरे सर में चलती रही। धैर्य रख, मुझे मालूम है मेरा चुनाव सही है, मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरेख करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है, तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा सब कुछ ईश्वर है। ये संसार, हर चीज, हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म।
और इस तरह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के परम सानिध्य में नरेन का आध्यात्मिक आकार बढ़ने लगा, फैलने लगा। और एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी।
प्रभु प्रभु, जल्दी चलें, कुछ गड़बड़ है।
हुआ क्या है गोपाल?
नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, वो बहुत बीमार है, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। उसकी दशा देखकर भय लगता है, मेरे साथ चलिए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए।
शांति से काम लो गोपाल, ये बताओ उसकी ऐसी दशा क्यों हुई?
मैं भी उसी कमरे में था, ध्यान लगा रहा था, जिसमें नरेन एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। मुझसे पूछा मेरा शरीर कहाँ चला गया। मैंने कहा है तो उसने कहा वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, कुछ गुरु भाई उसके साथ हैं, मालिश वगैरह कर रहे हैं। मैं आपको बताने चला आया। प्रभु चलिए।
दूसरे लोगों से कहो कि उसे अकेला छोड़ दें, कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, उसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। आखिर नरेन ने निर्विकल समाधि की अवस्था पा ली, उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन, तो आज मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। यह अनुभव ठीक वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। चाबी मेरे पास है और यह संदूक तब ही खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर लेगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है।
प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दो।
नहीं नरेन, तुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मां के प्रताप से तेरे लिए यह अनुभव बहुत आसान हो जाएगा। तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा।
अचानक ही नरेन के पिता का देहांत हो गया। संपन्न कहलाने वाला उनका परिवार अभावों में घिराया और घर की परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होने लगी, जिसने नरेन को हिला कर रख दिया। लेकिन इन सब का नरेन की ईश्वर को पाने की जिज्ञासा पर कोई प्रभाव नहीं दिखा।
मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। पिताजी की मृत्यु के बाद हम पर संकट के बादल छा गए हैं। संपन्न कहलाने वाला हमारा घर देखते ही देखते अभावों में आ गया है। आप माँ काली से कहकर मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए ना।
मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर बोल दे। आज मंगल का दिन है, माँ का दिन है, जो मांगेगा वो मिलेगा। जा जा, मांग ले जा।
माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो।
क्या रे, मांगा? माँ से धन मांगा?
नहीं बाबा।
जा जा, फिर से जा और मांग ले धन।
माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो।
क्या रे, माँ से घर का अभाव दूर करने का वर मांगा?
नहीं बाबा।
क्या रे, तू भी जा जा, फिर से जा, ठीक से याद करके सब मांग लेना।
माँ, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
अरे फिर से गुल्ला, जा, मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे परिवार को खाने पहनने की तकलीफ नहीं होगी कभी। पागल है तू, माँ से मांगने गया था? अरे वो तो जगत की माँ है, माँ को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए।
जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती मुख होता दिया और जीभ होती बाती असुवन की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती तेरी सेवा मैं करता कुछ पल माँ तू जो सोती और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी
और बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और समाधि से पहले बाबा ने अपने नरेन को अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी सौंप दी। नरेन ने परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करने का निश्चय किया क्योंकि वे जानते थे कि भारत के कोने कोने में ज्ञानी लोग बसते हैं, उनसे मिलकर वे अपने ज्ञान को और विकसित करना चाहते थे।
गुरुदेव के अद्भुत वचनों से मुझे अनोखा प्रकाश मिला है। उन ज्ञान के वचनों से मैं समझ पाया हूं कि तपस्वी और मुनि जो समाज से दूर वेदांत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है और उन्हें सामान्य जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मनुष्य जो भी व्यवसाय करता हो उसे बस यही समझना और अनुभव करना है कि ईश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में प्रकट किया है। वो सब में है, सब में समाया है और फिर भी सबसे अलग है। मनुष्य को ईश्वर का यह रूप मानकर उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है।
कोई देख नहीं पाता है हृदय मनीषा से कल्पित, वो जान गया जो वो अमृत पुत्र हो जाता है, वो अमृत पुत्र हो जाता है।
जहाँ जहाँ पर स्वामी जी जाते लोग उनकी अमृत वाणी को सुनने अपने आप उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। एक दिन शाम के समय गांव में
ब्रह्म अमर है, वो आगे है, वो पीछे है, वो दाएं है, वो बाएं है, ऊपर है, नीचे है, वो भी अखिल विश्व, वो विश्वांबर, वो तीर्थकर है, वो ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। आत्मविश्वास ही आत्म साक्षात्कार को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम तभी असफल होते हो जब तुम अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं, इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए, और बिना कोई समझौता किए। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाए, मैं कल फिर आऊंगा यहीं।
स्वामी जी।
क्या है
स्वामी जी? आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए पकाकर नहीं लाया। आप चाहें तो खुद ही पका ले, मैं लकड़ी ला देता हूँ।
अरे तुम बहुत दयालु हो, आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि मिल बांटकर इसे खा लेंगे।
पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी, आप मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खाएंगे?
तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसलिए अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो, जाओ पका कर लाओ।
और इसी तरह भ्रमण करते करते एक दिन स्वामी जी अलवर महाराज के राजमहल में पहुंच गए। अलवर के महाराजा की उस समय के समाज सुधारक आंदोलन आर्य समाज में गहरी आस्था थी।
स्वामी जी, आपने हमारे महल में प्रधारणा स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। स्वामी जी, आपके बारे में बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं।
मैं सोचता हूँ कि उनमें से कुछ अच्छी भी होगी महाराज।
अरे सबकी सब घड़ी मजेदार हैं। अब तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि साधु महात्माओं में आप सबसे अलग हो, बहुत अलग हो। आपकी विचारधारा प्रगतिशील है। वो क्या किस्सा है दीवान जी? स्वामी जी एक शूद्र के साथ भोजन कर रहे थे, क्यों दीवान जी?
जी महाराज, नगर में यही चर्चा हुआ है कि स्वामी जी हिंदू जात प्रथा ने कोनी माने हैं, और इससे भी बढ़कर स्वामी जी की परवाह भी कोनी करे है कि सामने वालों हिंदू है या मुसलमान या और कोई जात रो। स्वामी जी रो मानना है कि सब एक ही भगवान की पूजा करे है।
क्या स्वामी जी ये बात सच है?
जी महाराज।
मगर हिंदू होते हुए भी आप इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हो कि एक शूद्र के साथ भोजन करना पाप है।
महाराज मैं जाति प्रथा को घृणित समझता हूँ, इसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भयानक अपमान सहना पड़ा है। इससे जो पतन हुआ है वो शर्म की बात है। हमारा धर्म रसोई घर में पहुँच चुका है, चूल्हा और भोजन हमारे भगवान हो गए हैं। मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूँ, हमारा धर्म। मैं क्या हर व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा?
स्वामी जी आप अंधविश्वास के खिलाफ हो, होना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई ना समझो। अब ये बात रो समाधान किया करोला, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं कर सकूं, इस बारे में आप क्या कहोगे?
ये किसका चित्र है?
महाराज का।
दीवान जी कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी इस पर थूकिए, मैं कह रहा हूँ थूकिए, थूकिए इस चित्र पर।
स्वामी जी ये आप मुझे की वास्ते के रिया हो? ये महाराज रो चित्र है, ये मैं क्या कर सकू हूँ?
लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस है, ना रक्त है, ना तो ये महाराज की तरह बोलता है, ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और वो इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। उस समय वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा है, और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं।
स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी।
दीवान जी, तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दीजिए।
भारत भ्रमण के दौरान एक दिन हाथरस स्टेशन पर स्वामी जी की मुलाकात अपने पहले शिष्य शरद चंद्र गुप्ता से कुछ इस प्रकार हुई।
स्वामी जी आप कहां से आए हैं?
एक बहुत लंबा सफर तय करके।
क्या आप थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे?
मेरा यहाँ से जाना बहुत आवश्यक है, बहुत से काम पड़े हैं जो करने हैं।
मैं आपके साथ चल सकता हूँ?
हाँ, मगर कौन हो तुम?
जी, मैं शरद चंद्र गुप्ता, यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ।
एक भटकते हुए सन्यासी के साथ चलने का मतलब जानते हो?
अगर आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दे तो मैं सारा संसार छोड़ सकता हूँ।
मेरी मंजिल निश्चित नहीं है बेटे, मैंने पूरे देश की लंबाई चौड़ाई नापी है, लेकिन अभी भी मेरी खोज बाकी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अपनी मातृभूमि को नव जीवन देने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दो। मैंने बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे, इतना दुख कि मेरा हृदय भर गया है। अगर तुम एक ऐसे सन्यासी का साथ चाहते हो जो पर्वतों के एकांत में ध्यान लगाकर संतुष्टि पाता है, तो मैं तुम्हारे मतलब का आदमी नहीं हूँ।
जब आप सो रहे थे तो मैं देख रहा था, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। वो एकमात्र आप ही हैं जिनके पीछे मैं चलना चाहता हूँ।
देखो, ये काम सरल नहीं है।
जी, अगर आप साथ देंगे तो सब सरल हो जाएगा स्वामी जी।
अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
भारत भ्रमण करते करते नरेन स्वामी विवेकानंद कैसे बने? कौन था जिसने उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए प्रेरित किया? वे थे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। एक दिन उनके आग्रह पर वे राजमहल में पधारे और
स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है। इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है। कहिए, आप स्वीकार करेंगे?
कहिए तो सही महाराज।
मुझे आप बेटा कहकर ही बुलाइए, जैसा आप हमेशा कहकर बुलाते हैं, भले ही मैं खेतड़ी का महाराज क्यों न हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसा ही रहूंगा।
अच्छा बेटे, कहो,
आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारे जाएंगे, क्योंकि आप ज्ञान और आनंद के वाहक हैं। स्वामी, यही नाम आपके अनुकूल है। कहिए, आप स्वीकार करते हैं?
किया भाई, किया।
मुझे पता है आप स्वीकार करेंगे। आप अपने स्नेही जनों की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करते। एक बात और है, मैंने सुना है कि अमेरिका में शिकागो नामक शहर है, वहाँ विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक सम्मेलन हो रहा है। ये धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को आध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
मैं अमेरिका में धर्म सभा? किंतु
कोई बात नहीं, हर चीज का प्रबंध हो जाएगा। सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी पुण्य भूमि भारत को क्या प्रदान करना है। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया, अब आप सारे विश्व को समझाइए। अभी ये बहुत बढ़िया अवसर है। सारी दुनिया को अपने विचारों का उपहार दें। इनकार न करें स्वामी जी, इनकार न करें।
लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इस कार्य के योग्य हूं भी या नहीं।
आप योग्य नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद योग्य नहीं हैं। आप, सिर्फ आप ये कार्य कर सकते हो। मैं ये अच्छे से जानता हूं और शीघ्र ही सारी दुनिया भी जान जाएगी। अच्छा, आपकी आज्ञा हो तो मैंने आज आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध किया है।
मुझे क्षमा करना बेटे, मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए इस तरह के मनोरंजन की आज्ञा नहीं है।
करना मां, मैंने अपराध किया है। मैं यहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके गीत ने मेरी चेतना को जगा दिया। भगवान के सामने पवित्र अपवित्र मनुष्य जैसी कोई बात नहीं होती। वो किसी की निंदा नहीं करता। मुझे क्षमा करें मां, मुझे क्षमा करें।
पूरे भारत का भ्रमण करते करते स्वामी जी भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। यहां एक शिला पर खड़े होकर उन्होंने अपनी पहली अमेरिका यात्रा से पूर्व अपने सभी अनुयायियों को संबोधित किया और अपनी यात्रा के प्रयोजन की जानकारी सभी को दी।
मैंने पूरे भारत की यात्रा की, किंतु मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ। लोगों की गरीबी देख मैं अपने आंसुओं को रोक न सका। और अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गरीबी और कष्ट को दूर किए बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई मायने नहीं रखता है। किसी भूखे से धर्म की बात करना पाप है। मैं भारत के दीन दुखियों के लिए वहां से समाधान लाने की कोशिश करूंगा। मैं पश्चिम के सामने ये कहूंगा कि अगर भारत बीमार या तंदुरुस्त है तो उसका संबंध पूरी दुनिया से है। अगर भारत डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है। बदले में बाहरी दुनिया को भारत के आत्मा और ईश्वर संबंधी ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक विरासत, त्याग द्वारा सच्चे मोक्ष के आदर्श की आवश्यकता है। मैं अमेरिका को भारत का प्राचीन ज्ञान दूंगा और बदले में अपनी मातृभूमि के लिए वहां से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान लूंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल होता हूं तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है।
स्वामी, आपके यहां से जाने के बाद हम लोगों का कर्तव्य क्या होगा? हम लोग ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे?
काम काम काम। चक्कों की जगह अपने कंधों को रखो और ईश्वर की मनुष्य में सेवा करो। ईश्वर तुम्हें सदा आशीर्वाद देंगे।
इस तरह स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में भाग लेने शिकागो पहुंचे और उन्होंने 21 सितंबर 1893 के दिन शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को प्रथम बार संबोधित किया।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिस तरह विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ सीधे रास्तों पर चलते हुए तुझी तक पहुंचते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक सांप्रदायिक और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हो, जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुष्य को उसमें जगह मिले, और वो धर्म होगा प्रेम का। There will be only one religion, the religion of love। आप लोग ऐसा धर्म सामने रखिए कि तमाम राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे, चाहे जो हो, हिंदुओं के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, बौद्धों के बुद्ध, जरादुष्टिनों के अहरो मादा, यहूदियों के जहोवा और स्वर्ग में स्थित ईसाइयों के पिता। वो आपको शक्ति दे ताकि आप अपने विचारों का, उच्च विचारों का पालन कर सके। ईसाइयों को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है और ना ही बौद्ध और हिंदू को ईसाई ही बनना है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का एक सच्चा अनुयायी बनना है। हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्म की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है। अगर इस धर्म महासभा ने दुनिया को कोई संदेश दिया है तो वो ये है कि दुनिया में ये साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दया भाव किसी सांप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक व्यक्ति यह समझता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर, हर धर्म की ध्वजा पर लिखा होगा कि मेल करो, फूट नहीं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपनी मंजिल को ना पालो।
माता मिटा तुमने का घेरा फैला दे जियाना, माता मिटा तुमने का घेरा फैला दे जियाना, पाप काट दे पुण्य बांट दे सब में भर दे ज्वाला, अमृत पुत्र बने वो माता, माता
विघ्न विनाशक गणनाथा। विघ्न विनाशक गणनाथा।
Yeah.
धर्म शांति प्रेम सबको दीजो। सत्य धर्म शांति प्रेम सबको दीजो। सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय।
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय
मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय
गोपिकमाल हारी प्यारी भाई मीर मन बिगारी मरण मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय
कृष्ण जय
राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाल कृष्ण 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 जय
कृष्ण जय राम कृष्ण जय
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय बाल बाल कृष्ण जय
गोविंद कृष्ण जय गोपाल
गोपिकमाल हारि कारि माई मीर मन विहार मदन मोहन मुरली धारि कृष्ण जय
गोपिकमाल हारि कारि माई मीर मन
विहार गोपिकमाल हारि कारि माई मीर मन विहार मदन मोहन मुरली धारि कृष्ण जय
गोपिकमाल हारि कारि माई मीर मन विहार
कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय
ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति
शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
साई राम विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ आवर मोस्ट बिलोवड भगवान वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विटनेस्ड ए वंडरफुल ड्रामा इनैक्टेड बाय द यूथ एंड बाल विकास चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान. यू हैव डन रियली ए गुड जॉब. मे भगवान कंटिन्यू टू इंस्पायर यू सच दैट यू विल बी कमिंग ओवर हियर with many such themes. May God bless you. Now I have great pleasure in introducing tomorrow's program. This is very special in the sense, with all the feeling of gratitude and thanks to Bhagavan, the institution Sri Satsa University takes pride in one of the alumnus by name Amar Vivek, who was the first batch MBA student of our university. We are also happy to note that he received a presidential award in the year 1985. Amar Vivek is a lawyer practicing at the High Court, Haryana and Chandigarh. Having been inspired by Bhagwan, he started a school, hospital and vocational center and is a member of the trust. That is the effect of Bhagwan Sri Satsai Baba. Satsai University is not a manufacturing center of producing hundreds and hundreds of students with degrees. No. The institution aims to mold them as responsible citizens of this country, and Amar Vivek is one among them. Well, I am glad to say that tomorrow the children from Sri Satya Sai Jagriti Vidya Mandir, it's managed by the trust and is member of the trust. And tomorrow's drama is going to be very interesting because it speaks of the role of a Balavikas guru. And they have also given us the brochure, what Bhagwan expects from a teacher. It is not enough if you disseminate knowledge. It is not enough if you simply teach. You have got a responsible role, not merely transmitter, but you have got to transform the lives of the students committed to our care. This Balavikas guru visits a neighboring village and brings out a feeling of amity, unity among the residents, striving hard for the unity of faiths, which is the fundamental principle of Bhagwan's divine mission. We are going to witness the drama tomorrow, in the evening, in Sai Kulanth Hall, in the divine presence of our most beloved Bhagwan. And that is going to be staged by Sri Satya Sai Jagriti Vidya Mandir, Dharwa Yamuna Nagar, Haryana. The title of the drama is Sarva Dharma Swarupa Sai. May God bless you. Sai Ram. Rep Sayankalam 5 gantalaku Sai Kulanthal Sabha Mandapamlo ભગવાન બાબા વારી દિવ્ય સન્નિધિલો હરિયાણા నుండి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ సత్యసాయి జాగృతి విద్యా మందిర్ బాలికలచే ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాటు గావింపబడింది. అందులో ఒక బాల వికాస్ గురువు సమీప గ్రామంలో ఏ రీతిగా అయితే సర్వమత సమైక్యత కొరకు కృషి చేసిందో దాని యొక్క స్పష్టంగా ఒక నాటక రూపంలో ప్రదర్శింపుతారు. రేపు ఈ సత్యసాయి విద్యా మందిర్ అనే దాన్ని స్థాపించినటువంటి వాడు శ్రీ సత్యసాయి విశ్వవిద్యాలయానికి చెందినటువంటి పూర్వ విద్యార్థి, రాష్ట్రపతి బహుమాన గ్రహీత, హైకోర్టులో పనిచేస్తున్నటువంటి లాయర్ అమర్ వివేక్. రేపు నాటకము సర్వధర్మ స్వరూప సాయి బాల వికాస్ విద్యార్థులచే. సాయిరామ్.